समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
जिंदगी बहुत छोटी है, इसे ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपको हंसाएं, खुश रखें और आपको महसूस कराएं कि आप उनके लिए कितने जरूरी हैं। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर शुरू करते हैं आज सवेरे कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूँ मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी नीना अरकल। नीना, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग to you our daily news magazine program Aaj Savere, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 20th of April 2026. Let's begin with the headlines, Mukesh.
Ji Nina. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का आयोजन करेंगे। श्री ली म्यूंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से कल मुलाकात की थी। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता के लिए श्री म्यूंग की सराहना की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। श्री ली म्यूंग की ये पहली भारत यात्रा है।
Vice President C.P. Radhakrishnan will travel to Nuwara Eliya today on the second day of his official visit to Sri Lanka, underscoring India's deepening development partnership and sustained outreach to grassroots communities. During the visit, he will tour India-backed housing project sites and engage directly with members of the Indian origin Tamil community, signalling New Delhi's continued commitment to their welfare and long-term socio-economic advancement. Yesterday, the Vice President held wide-ranging talks with President Anuragha Kumara Dissanayake and Prime Minister Harinik Amarasuriya, reaffirming shared priorities in bilateral cooperation. He also addressed the Indian origin community, announcing a significant expansion of the OCI scheme.
भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण की बातचीत आज फिर शुरू होगी। ये वार्ता 22 अप्रैल तक वाशिंगटन में होगी। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। सीमा शुल्क और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी बातचीत में शामिल होंगे। वार्ता का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर शुल्कों में बदलावों के बीच उसकी रूपरेखा की समीक्षा करना है। अमरीकी शुल्कों में बदलावों के बाद दोनों देशों के प्रस्तावित समझौते के फिर आकलन के लिए ये वार्ता महत्वपूर्ण है।
Iran has denied agreeing to a second round of peace talks with United States, directly contradicting President Donald Trump, who said American negotiators would arrive in Pakistan tonight for negotiations. Iran's official news agency, IRNA, cited Washington's excessive demands, unrealistic expectations, constant shifts in stance, repeated contradictions, and the ongoing naval blockade as reasons for the refusal, describing the blockade as a breach of ceasefire conditions. Iran's Revolutionary Guard has also closed the Strait of Hormuz, requiring commercial ships to obtain explicit permission and follow guard-approved routes, warning that vessels approaching without clearance could be targeted, a report.
United States President Donald Trump accused Iran of serious violation of the ceasefire, but struck a cautiously optimistic tone about the possibility of an eventual deal. He warned, however, that an agreement would come one way or another, reiterating that U.S. stands ready to respond forcefully if Tehran does not comply. American forces, meanwhile, continue enforcing the naval blockade. Iranian authorities have linked the Lebanon situation directly to their broader talks with the U.S., and Tehran noted that their missiles and drone launchers are being replenished at a faster rate than before the conflict began, a pointed signal to Washington ahead of any future negotiations. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदाताओं का आंकड़ा जारी कर दिया है। 3,07,77,171 मतदाता इस चरण में मतदान के लिए पात्र हैं। इनमें 1,84,99,496 पुरुष, 1,75,77,210 महिला और 400 किन्नर मतदाता हैं। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्राधिकरण सुरक्षा व्यवस्था, मतदाताओं को सहयोग तथा मतदान सामग्री पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। इस बीच पहले चरण का चुनाव प्रचार चरम पर है। इस चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 मई को होगी।
In IPL cricket, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 54 runs in New Chandigarh last night. Chasing a target of 255 runs, Lucknow Super Giants could only score 200 for 5 in the stipulated 20 overs. For Punjab Kings, Marco Jansen scalped 2 wickets while Archdeep Singh, Vijay Kumar Vaishak and Yuzvendra Chahal took a wicket each. Earlier, Lucknow Super Giants won the toss and opted to bowl. Today, Gujarat Titans will face Mumbai Indians at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. The match will start at 7:30 p.m.
और आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है मेट्रो न्यूज का, तो नीना आपके पास चेन्नई से क्या खबरें हैं?
Yes, beginning with Chennai, Mukesh. In Tamil Nadu, the election officials are involved in an awareness campaign for 100% voting in many districts. In Viluppuram, arranged a multi-grain arrangement on the importance of voting. In Thoothukudi, randomization was done on Sunday. Walkathon was held in Krishnagiri, urging the voters to exercise the franchise. At Salem, Anganwadi workers attended a rally emphasizing 100% voting. And what do we have from Delhi?
हाँ, उससे पहले हम मुंबई के समाचार बता दें अपने श्रोताओं को। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने कहा है कि समाज के सबसे निचले तबके का विकास विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी है और इसके लिए पालघर की प्रगति बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया के अवसर पर वन बंधु ट्रस्ट और भारत विकास संगम द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में मोबाइल क्लिनिक और एम्बुलेंस सेवाएं शुरू करने के कार्यक्रम में कल उन्होंने दहानू में यह बात कही। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वर्तमान अवसंरचना परियोजनाओं से कल्याण डोंबिवली में काफी परिवर्तन आ रहा है। उन्होंने किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि मेट्रो लाइन 5 और 12 जैसी प्रमुख परियोजनाएं प्रगति पर हैं और इनके चालू होने के बाद यातायात जाम से मुक्ति मिलेगी। और मध्य रेलवे ने मुंबई डिवीजन की एक विशेष टिकट चेकिंग अभियान में बिना टिकट यात्रा कर रहे 9,509 यात्रियों को पकड़ा और एक ही दिन में कुल 71 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला। इससे पहले घाटकोपर, विक्रोली, वाशी, भांडुप, मुलुंड, बेलापुर और भाईकुला जैसे स्टेशनों पर भी इसी तरह की जांच की गई थी। और मुंबई हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारियों ने बैंकॉक से लगभग 9 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में 29 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हरियाणा निवासी बसंत सिंह के रूप में हुई है।
The city's 5 corporations have warned of strict action against staff failing to perform duties under the ongoing national census. Bengaluru North City Corporation, BNCC, has issued show cause notice to 527 employees for not reporting to enumeration work, warning of criminal cases and disciplinary action. Self-enumeration saw poor response with less than 2% participation, prompting a door-to-door survey now underway until May 15. Over 23,000 enumerators and 2,500 supervisors have been deployed. While officials say each enumerator covers around 200 houses, some staff claim workloads exceed 300, raising concerns over pressure, health issues and delayed salaries. Some more from Bangalore. The Bengaluru Water Supply and Sewage Board, BWSSB, under Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar, will convert sewage sludge into compressed biogas, generating over 120 crore rupees in 20 years. The project, India's largest of its kind, will be processed 550 MLD of sewage across 5 plants, upgrading biogas for use in city gas networks and transport fuel. implemented under a PPP model, the private partner will invest 85 crore rupees and 85 crore rupees and manage operations, ensuring zero cost to BWSSB. Beyond revenue, the initiative boosts Bengaluru's energy security and offers a scalable model for other cities. The state cabinet has approved the 20-year project. Some more from Bengaluru. Energy Minister K.J. George stressed that beyond policy, coordinated efforts are vital for energy transition at Sustainable Energy India Agenda 2047 conference. He said the shift to renewables must move from ambition to action through collaboration among the judiciary, policymakers and industry, with outcomes like the Bengaluru Declaration guiding a sustainable future. George reaffirmed Karnataka's focus on expanding renewables, strengthening storage and ensuring affordable power. Officials including Justice Vikram Nath and Minister H.K. Patil underscored the need for collaboration, innovation and energy security to meet future demand.
और अब बात करते हैं कोलकाता महानगर की। निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के मतदान से पहले पूरे राज्य में व्यापक सुरक्षा अभियान चलाया है। इसके अंतर्गत 2 लाख से अधिक उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। चुनाव के दिन किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए इन व्यक्तियों को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें अपने वकीलों के माध्यम से लिखित वचन देना पड़ा कि वे किसी प्रकार की अशांति में शामिल नहीं होंगे। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि चुनाव के दिन हिंसा में किसी भी प्रकार शामिल होने पर कम से कम 6 महीने की तत्काल न्यायिक हिरासत होगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का पहला चरण 23 अप्रैल को होगा, इसके बाद दूसरा चरण 29 अप्रैल को और मतगणना 4 मई को होगी।
नाउ मुकेश, लेट्स मूव फ्रॉम कोलकाता टू हैदराबाद। In a move to reinforce the state's fight against narcotics, Telangana Governor Shiv Pratap Shukla has proposed that students provide a formal pledge or declaration against drug use during the admission process in schools and colleges. The recommendation was made during a high-level meeting at Lok Bhavan and Chief Minister A. Revanth Reddy and State Minister D. Sridhar Babu, where the group prioritized the creation of drug-free campuses across the state. The Governor emphasized the critical need for increased awareness regarding the dangers of substance abuse within the education sector. Beyond the admission pledge, they highlighted an upcoming large-scale awareness program scheduled for June 12 at LB Stadium, which will be held under his leadership. During the discussion, which was also attended by MP Vem Narendra Reddy, the governor urged the state government to implement more rigorous controls to eliminate drug availability in educational environments. Chief Minister Reddy expressed his support for the initiatives, assuring the governor that the state would carefully evaluate the proposals and take appropriate action to safeguard students.
और अब रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का। तो दिल्ली में अपने श्रोताओं को बताएं कि आज यातायात में कुछ व्यवधान पड़ सकता है, तो निकलने से पहले जो हम समाचार देने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुन लें। यातायात पुलिस ने आज सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच अति विशिष्ट व्यक्तियों के राजघाट दौरे के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात पुलिस के अनुसार आईटीओ चौक से दिल्ली गेट, आसफ अली रोड, शांतिवन चौक से निषाद राजमार्ग, गुरु नानक चौक से रणजीत सिंह फ्लाईओवर, राजघाट डीटीसी डिपो से रिंग रोड बाईपास और इससे सटे अन्य क्षेत्रों में यातायात बाधित रहेगा। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आज सवेरे 8 बजे संस्कृत भारती के नए केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर यातायात बाधित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों से प्रभावित मार्गों से बचने, गंतव्य के लिए पहले से निकलने और किसी भी असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। और दिल्ली सरकार ने दिल्ली सेमीकंडक्टर पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली को सेमीकंडक्टर डिजाइन, उन्नत अनुसंधान और विकास तथा असेंबली गतिविधियों के लिए एक सक्षम केंद्र के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो देश में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास में दिल्ली की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने देने के लिए विपक्ष की आलोचना की है। संवाददाता सम्मेलन में कल उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं संसद और राज्य विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसके अलावा दिल्ली के मंत्री रविंद्र इंद्रजाल सिंह ने कल अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 20 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने दरियापुर कला में लगभग 5 करोड़ की लागत से निर्मित फिरनी रोड का लोकार्पण किया। श्री सिंह ने कहा कि अब नागरिकों को सुगम, सुरक्षित और तेज संपर्क सुविधा का लाभ मिलेगा, साथ ही यातायात व्यवस्था मजबूत होगी। और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने प्रहलाद विहार में लगभग 45 लाख रुपए की लागत से नई पानी की पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ किया। और आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और नीना अरकल के साथ। और अब वक्त है मौसम की जानकारी का। तो चेन्नई और बाकी शहरों में कैसा रहेगा मौसम?
So weather news from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Yes. Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 23 degrees Celsius and maximum will be around 37 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between minimum of 27 degrees and a maximum of 40 degrees Celsius.
Aur Neena, Delhi ki agar baat karein, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मौसम जो है काफी गर्म होता जा रहा है। आज का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोलकाता में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। दोपहर या शाम तक आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं और आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुंबई का रुख करें तो मुंबई में आज धुंध के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इट्स नाउ मुकेश टाइम टू टर्न द पेजेस ऑफ हिस्ट्री।
जी बिल्कुल।
1971, India won cricket test rubber for the first time after defeating West Indies cricket team. In 1993, Jharkhand movement suspends its 36 days old economic blockade. In 1997, Sheri Bumbout and Hamshad Bumbout with National Seabird Sailing Title.
और अगर 1999 की बात करें तो आज ही के दिन जर्मनी के पूर्व चांसलर हेलमेट कोल अमरीकी सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किए गए थे।
In 2000, a full bench of Madras High Court quashes the Tamil Nadu government order making Tamil as the compulsory medium of instruction in all schools in the state up to standard 5.
सन 2008 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 दिन व्यतीत करने के बाद पहला दक्षिण कोरिया अंतरिक्ष यात्री सीओन पृथ्वी पर सकुशल लौट आया था। और 2011 में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी ने 20 अप्रैल 2011 यानी बुधवार को 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया था। और अमरीकी मीडिया ने भारत के अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण पर कहा था कि इससे भारत को उसके पड़ोसी देश चीन के बराबर ला खड़ा किया है।
National Fire Service Week is observed across India from April 14 to April 20 every year to pay homage to firefighters who lost their lives in the line of duty and to promote fire safety awareness. The theme for this year is Safe School, Safe Hospital and Fire Safety Aware Society, Together for Fire Prevention. Fire safety is treated as a collective responsibility aiming for a fire-free future by reinforcing the need for proactive safety measures.
और अब याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक पन्नालाल घोष को। पन्नालाल घोष की आज पुण्यतिथि है। पंडित पन्नालाल घोष बांसुरी के मसीहा, नई बांसुरी के जन्मदाता और भारतीय शास्त्रीय संगीत का युग पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने लोक वाद्य बांसुरी को शास्त्रीय के रंग में ढालकर शास्त्रीय वाद्य यंत्र बना दिया। और पन्नालाल बाबू शास्त्रीय बांसुरी के जन्मदाता हैं और उन्हें बांसुरी का मसीहा कहा जाता है, जिन्हें बांसुरी की लोक वाद्य से शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है। उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम था कि 1930 में उनका पहला एलपी जारी हुआ। आने वाली सदियों में पन्नालाल घोष के काम को कभी भूल नहीं सकती हैं। उन्हीं का प्रयास है कि कृष्ण कन्हैया की बांसुरी का आज के फ्यूजन संगीत में भी प्रमुख रोल है। और बांसुरी को शास्त्रीय वाद्य के रूप में लोगों के दिलों में बसाने का काम पन्नालाल ने किया और पंडित हरप्रसाद चौरसिया जैसे बांसुरी वादकों ने इस वाद्य यंत्र को विदेशों में भी लोकप्रिय किया। पन्ना लाल जी ने कई फिल्मों में भी बांसुरी बजाई थी जो आज भी अद्वितीय हैं, जिनमें मुगले आजम, बसंत बहार, बसंत दुहाई, अनजान और आंदोलन जैसी कई प्रसिद्ध फिल्में प्रमुख हैं, जिसकी संगीत के साथ पंडित पन्ना लाल घोष का नाम जुड़ा रहा है। और हम याद कर रहे हैं महान शायर और गीतकार शकील बदायूनी को। आज उनकी पुण्यतिथि है। तहजीब के शहर लखनऊ ने फिल्म जगत को कई हस्तियां दी हैं। इनमें से एक गीतकार शकील बदायूनी भी हैं। अपनी शायरी की बेपनाह कामयाबी से उत्साहित होकर उन्होंने अपनी आपूर्ति विभाग की सरकारी नौकरी भी छोड़ दी थी और वर्ष 1946 में दिल्ली से मुंबई चले गए। शकील बदायूनी को अपने गीतों के लिए लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें पहला फिल्म फेयर पुरस्कार वर्ष 1960 में प्रदर्शित 14वीं का चांद फिल्म के 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो गाने के लिए दिया गया। तो क्यों ना नीना, ये गाना पहले सुना जाए।
श्योर।
चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो।
और शकील बदायूनी ने करीब 3 दशक के फिल्मी जीवन में लगभग 90 फिल्मों के गीत लिखे हैं। तो उनकी फिल्म का एक और गाना।
दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया।
और अगर शकील बदायूनी के फिल्मी सफर पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि उन्होंने सबसे अधिक फिल्में संगीतकार नौशाद के साथ ही की हैं। तो उनकी फिल्म का एक और गाना।
मनवामा कतक होई बेकरी, प्रेम का चुटी है पटाका तो धमक होई बेकरी, नैन लड़ जाई है तो मनवामा कतक होई बेकरी।
और अगर 1947 की हम बात करें तो अपनी पहली ही फिल्म दर्द के गीत अफसाना लिख रही हूं की अपार सफलता के बाद शकील बदायूनी कामयाबी के शिखर पर जा बैठे। और शकील बदायूनी ने मुगले आजम फिल्म में भी गीत लिखे हैं। तो उस फिल्म का अगर हम गीत ना सुनाएं तो ये बेमानी होगा।
And Andrew Clemens Serkis is an English actor and film director. He is best known for his performance capture roles comprising motion capture acting, animation and voice work in The Lord of Rings film trilogy and The Hobbit, An Unexpected Journey, King Kong in the eponymous 2000 film Caesar in the Planet for the Apes reboot series Captain Haddock, Sir Francis Haddock in Steven Spielberg's The Adventures of Tintin, and Supreme Leader Snoke in the first two Star Wars sequel trilogy films, The Force Awakens and The Last Jedi. In 2018, he portrayed the character of Baloo in his self-directed film Mowgli, Legend of the Jungle. He has received an Empire Award and two Saturn Awards for his motion picture capture acting. Here's a movie clip from Mowgli, Legend of the Jungle.
Akira, why am I different?
You are special, little brother.
You've got hands, so let's use them. Stop!
Out of my way!
I shouldn't let them pick on me like that. Wolf's supposed to be with other wolves.
He's not a wolf.
Crispin Glover is an American actor and director. Glover is known for portraying eccentric characters on screen, such as George McFly in Back to the Future, Lane in River's Edge, Bobby McBurney in What's Eating Gilbert Grape, The Thin Man in Charlie's Angels, The Knave of Hearts in Alice in Wonderland. Since 2017, he has played Mr. World in the Starz television series American Gods. Let's listen to him rock out to Johnny B. Goode from the movie Back to the Future.
We're down in Louisiana, down in New Orleans. We're back up in the woods among the evergreens. We stood a long cabin made of earth and wood. We lived a country boy named Johnny B. Goode. He never ever learned to read or write so well. He could play the guitar just like he's ringing a bell.
और अब हम याद कर रहे हैं बॉलीवुड और मराठी फिल्मों के अभिनेता किशोर नंदलास्कर को. आज उनकी पुण्यतिथि है. उन्होंने वैसे तो कई सारी फिल्मों में काम किया है, लेकिन वो अभिनेता गोविंदा की फिल्म जिस देश में गंगा रहता है में सन्नाटा का किरदार निभाकर मशहूर हुए थे. इस फिल्म में वो गूंगे और बहरे का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुए थे, जो बेहद कमाल का था. और अब हम याद कर रहे हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज जयंती है. उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गोपीनाथ मोहंती को हम याद कर रहे हैं, आज उनकी जयंती है. वर्ष 1930 से 1938 के बीच का समय इनके लेखक जीवन का निर्माण काल माना जाता है. गोपीनाथ मोहंती को 1973 में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. बाद में 1981 में भारत सरकार ने उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से पुरस्कृत किया. और हम याद कर रहे हैं भारतीय थल सेना के 41वीं डोगरा में लांस नायक लाला राम को आज उनकी जयंती है. उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रमुख भूमिका निभाई. उन्होंने मेसोपोटामिया, जो कि इराक में है, हन्ना के युद्ध में 21 जनवरी 1916 को बहादुरी की मिसाल कायम की, जिसके लिए उनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया.
Luther Vandross was an American singer, songwriter and record producer throughout his career. Vandross was an in-demand background vocalist for several different artists, including Todd Rundgren, Judy Collins, Chaka Khan, Bette Midler, Diana Ross, David Bowie, Ben E. King and Donna Summer. Many of his songs were covers of original music by other artists, and duets such as The Closer I Get to You with Beyoncé and This Love with Mariah Carey and The Best Things in Life Are Free with Janet Jackson were all hit songs. Let's listen to the song Best Things in Life.
और अब हम याद कर रहे हैं भारतीय भजन भक्ति संगीत की गायिका जुथका रॉय को. आज उनकी जयंती है. उन्होंने अपने 4 दशक लंबे करियर में 200 से अधिक हिंदी और 100 से अधिक बंगाली गानों को आवाज दी. उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए हिंदी भक्ति संगीत भी रिकॉर्ड करवाए. जुथका रॉय को 1972 में भारत के 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया.
Right. Rajiv Menon is an Indian filmmaker who has worked as a director and cinematographer in several Indian regional film industries. He has also directed two critically acclaimed Tamil films, Minasu Kanavu and Kandukondain, winning a Filmfare Award. Enjoy this medley from his movie Bombay.
और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज का आज सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाए, तो मुकेश कुमार और नीना अरकल को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।